लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि दुख कष्टों और कठिनाइयों में पड़े सभी पीड़ितों को सहायता और एकात्मता प्राप्त हो। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, मानव की पांच मुख्य ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, जीभ और स्पर्श, जिसमें हम जीभ का एक अलग ही महत्व पाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल स्वाद की अनुभूति लेते वरन अपने को वचनों में व्यक्त करने के योग्य बनते हैं। अपनी जिह्वा के द्वारा हम विश्वव्यापी कई तरह के लजीज व्यंजनों का रसा स्वादन करते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो कई बार हम अपनी जीभ के आनंद और स्वाद मात्र ही बहुत सी चीजों का लुफ्त उठाते हैं। इस भांति हम बहुत सारी चीजों का सेवन केवल इसलिए करते हैं कि वे हमारी जीभ के लिए स्वादिष्ट होती हैं। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य को कुछ भी प्रभाव पड़ता हो। श्रोताओ, आज माता कलिसिया यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त का त्योहार मनाती है, जहां हम यीशु को सारी मानव जाति के लिए अपने को एक जीवंत रोटी स्वरूप देता हुआ पाते हैं। वे हमें अपने को ग्रहण करने हेतु निमंत्रण देते हैं, यह कहते हुए कि जो कोई उन्हें खाएगा वह सदा जीवित रहेगा। आइए हम यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त के महोत्सव आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार का श्रवण करें और अपने में यह देखें कि मुक्तिदाता यीशु, जो स्वर्ग से जीवंत रोटी के रूप में हमारे लिए मानव बनकर आए, हम उस रोटी को किस रूप में अपने लिए ग्रहण करते हैं। क्या हम सही अर्थ में यीशु ख्रिस्त के शरीर और रक्त का पान करने हेतु अपने को लालायित पाते हैं, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है।
स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिला है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें यीशु ख्रिस्त पर अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद करें, जिससे हम उनके शरीर और रक्त को अपने जीवन में ग्रहण करने के अर्थ को समझ सकें, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। श्रोताओ, विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया आज के पहले पाठ में हम नबी मूसा को चुनी हुई प्रजा हेतु इस बात का स्मरण दिलाते हुए सुनते हैं कि कैसे याहवे ने 40 वर्षों तक मरुभूमि में उनकी परीक्षा ली। अपनी इस परीक्षा के द्वारा याहवे अपनी चुनी हुई प्रजा को नम्र और दीन होने की शिक्षा देना चाहते हैं। इस परीक्षा के द्वारा वे उनके मनोभावों को जानना चाहते हैं कि जिन्हें उन्होंने मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया है वे अपने ईश्वर के प्रति निष्ठावान हैं या नहीं। पहला पाठ हमारे लिए यह भी प्रस्तुत करता है कि किस तरह ईश्वर ने मरुभूमि में अपनी प्रजा की सुधि ली। उन्होंने उन्हें मन्ना खिलाया और चट्टान से निर्मल जल धारा बहाते हुए पानी पिलाया। ईश्वर द्वारा किए गए कार्यों की याद दिलाते हुए उन्हें अपने ईश्वर को नहीं भूलने का संदेश दिया गया। वहीं एक दूसरी बात जिसे हम पहले पाठ में पाते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, वरन वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। श्रोताओ, पहले पाठ के संदर्भ का अवलोकन यदि हम अपने जीवन में करें तो यह हम सबों के जीवन में सटीक बैठता है। हम अपने जीवन की राह में कई तरह की कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करते हैं। जीवन की कठिनाइयां और चुनौती भरे क्षण हमारे लिए मरुभूमि की भांति सूखे लगते हैं। अपनी कठिनाइयों के कारण हमारा पूरा जीवन बोझिल लगता है और हम सांत्वना और चैन शांति की कामना करते हुए दर दर भटकता हुआ नजर आते हैं। जीवन की ऐसी परिस्थितियों में यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन की कटु और कठोर सच्चाई से ही हमारे लिए अपने शांति रूपी निर्मल झरने के पानी को प्रवाहित करते हैं, जो उनके वचनों में हमारे अटूट विश्वास के कारण ही फूटकर निकलता है। अपने जीवन के घोर दुख की घड़ी में भी यीशु ख्रिस्त के वचनों को सुनना, उन्हें अपने हृदय में ग्रहण करना और उन पर विश्वास करना हमारे लिए शांति, बल और सांत्वना का कारण बनती है। 40 वर्षों तक जिस भांति इसराइलियों के धैर्य और निष्ठा की परीक्षा ली गई, ठीक उसी भांति यीशु ख्रिस्त हमारे दुखों के द्वारा हम सबों के निष्ठावान बने रहने की परीक्षा लेते हैं। श्रोताओ, यहाँ हम इस बात की याद करें कि घोर दुखों और क्रूस के कठिन मृत्यु द्वारा स्वयं ईश पुत्र यीशु ख्रिस्त की परीक्षा ली गई, जहाँ वे अपने पिता के प्रति निष्ठावान बने रहे और अपने जीवन में खरा उतरे। आज का दूसरा पाठ और सुसमाचार हमें यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने हेतु एक परिवार स्वरूप एक ही भोज में शामिल होने की बात कहता है। यीशु ख्रिस्त एक हैं और इस भांति ख्रिस्त याग में हमारी सहभागिता, जहां हम एक ही कटोरे से पीते और एक ही रोटी खाते हैं, हमारे अलग अलग होते हुए भी हमें यीशु ख्रिस्त में एक परिवार का अंग बनाता है। श्रोताओ, यीशु ख्रिस्त का स्वर्ग से उतरकर धरती में आने का उद्देश्य मानवता के पापों को दूर कर सारी मानव जाति को पिता के प्रेम में सूत्र में पिरोना, हमें एक बनाना था, जैसे कि स्वर्ग में त्रित्व में ईश्वर एक हैं। जिस भांति भौतिक भोजन हमारे शरीर का अंग बनता और हमारे जीवन को सुचारू रूप से संचालित करता है, उसी भांति यीशु ख्रिस्त और उनके वचनों में विश्वास करना तथा सच्चे अर्थ में उनके शरीर रक्त को ग्रहण करना हमें उनके द्वारा मिलने वाले अनंत जीवन का भागीदार बनाता है। यीशु के पावन शरीर और रक्त का महोत्सव आज हमारे लिए यही संदेश देता है कि हम यीशु ख्रिस्त के जीवंत वचनों में विश्वास करने और अपने उस विश्वास को कार्यान्वित करने हेतु बुलाए जाते हैं। आइए हम त्रित्व में ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें जीवन के इस मर्म को समझने में मदद करें, जिससे हम अपने जीवन को पिता ईश्वर की योजना अनुरूप जीने के योग्य बन सकें, जो हमें पुत्र में अनंत जीवन की सौगात प्रदान करते हैं।
इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं तब याद आता है तेरा।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गरीबों के लिए चौथे विश्व दिवस हेतु एक संदेश प्रकाशित किया जिसको 15 नवंबर को मनाया जाता है। संदेश में संत पापा ने लोगों का आह्वान किया है कि वे गरीबों पर ध्यान दें, खासकर COVID-19 महामारी के समय में। संदेश की विषय वस्तु है गरीबों के लिए अपना हाथ बढ़ाओ, जिसको प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है। संत पापा ने कहा कि वर्षों पुराने ज्ञान के इन शब्दों को जीवन में पालन किए जाने वाले पौत्र नियम के रूप में प्रस्तावित किया गया है। आज ये शब्द हमेशा की तरह यथावत हैं। ये हमें अपने निगाहों को आवश्यक चीजों पर लगाने तथा उदासीनता के घेरे से बाहर निकलने में मदद देते हैं। संत पापा ने कहा है कि गरीबी कई तरह से प्रकट होती है तथा हर परिस्थिति में ध्यान दिए जाने की मांग करती है। इन सभी परिस्थितियों में हम प्रभु यीशु से मुलाकात कर सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को छोटे से छोटे भाई बहनों में उपस्थित होने के रूप में प्रकट किया है। संत पापा ने प्रवक्ता ग्रंथ के शब्दों का स्मरण दिलाते हुए कहा है कि इसराइलियों पर विदेशी शक्तियों के वर्चस्व के कारण दुख, शोक और गरीबी के समय लेखक ने लोगों को जीवन की सीख दी थी। विश्वास के एक महान व्यक्ति के रूप में अपने पूर्वजों की परंपराओं में सुदृढ़ उनका पहला विचार था ईश्वर की ओर मुड़ना एवं उनसे प्रज्ञा का वरदान मांगना। प्रवक्ता ग्रंथ के शुरू से ही लेखक जीवन की ठोस परिस्थिति एवं गरीबी के बारे में सलाह प्रस्तुत करते हैं। वे जोर देते हैं कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी हम ईश्वर पर भरोसा बनाए रखें। विपत्ति के समय तुम्हारा जी नहीं घबराए, ईश्वर से लिपटे रहो, उससे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख एवं विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीन की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों की। संत पापा ने संदेश में कहा है कि प्रवक्ता ग्रंथ के हर पृष्ठ में हम सृष्टिकर्ता एवं सृष्टि से प्रेम करने वाले ईश्वर के साथ उनके पुत्र पुत्रियों की तरह नजदीकी संबंध स्थापित करने की सुंदर सलाहों को पाते हैं। वास्तव में ईश्वर से प्रार्थना और गरीबों तथा पीड़ितों के प्रति एकात्मकता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर को एक सुयोग्य वरदान अर्पित करने के लिए हमें जानना है कि हर व्यक्ति चाहे वह अत्यधिक गरीब और तुच्छ क्यों ना हो, वह ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया गया है। इसी चेतना के द्वारा ईश्वर की कृपा हम लोगों पर पड़ती है जब हम गरीबों के प्रति उदारता दिखलाते हैं।
इस प्रकार प्रार्थना के लिए समर्पित समय हमारे पड़ोसी की जरूरत में उसकी उपेक्षा करने का बहाना नहीं बन सकता। वास्तव में प्रार्थना में प्रभु की आशीष तभी प्राप्त होती है जब यह गरीबों की सेवा से जुड़ा हो। संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को वैटिकन में 2 महिलाओं को आधिकारिक पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने डॉक्टर राफेला विंचेंती को वैटिकन प्रेरित पुस्तकालय की प्रमुख एवं प्रोफेसर अंतोनेला शियारोने को वित्तीय सूचना विभाग के प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया।
ब्रिटेन की महारानी इलिजाबेथ का 94वां जन्मदिन आधिकारिक तौर पर आज मनाया गया। इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाली महारानी इलिजाबेथ ब्रिटेन सम्राट के रूप में 4 परमाध्यक्षों से अपने जीवन काल में 5 बार मिल चुकी हैं। हालांकि रानी का जन्म 21 अप्रैल को हुआ था, उनका जन्मदिन जून में दूसरे शनिवार को आधिकारिक तौर पर मनाया जाता है, जो इस वर्ष 13 जून शनिवार को है। 1926 में जन्मी एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी अपने पिता महाराजा जॉर्ज छठे की मृत्यु के बाद 1953 में 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठी। रानी एलिजाबेथ की वाटिकन की पहली यात्रा 1951 में राजकुमारी एलिजाबेथ के रूप में हुई थी। उस समय संत पापा पियूस 12वें थे। रानी एलिजाबेथ की वाटिकन की दूसरी यात्रा 5 मई 1961 को हुई। रानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप को संत पापा जॉन 23वें ने वाटिकन में स्वागत किया। मुलाकात के दौरान संत पापा जॉन 23वें ने शांति, उदारता और भाईचारे के महान ख्रीस्तीय आदर्श को साकार करने में उनके साहस, पहल की भावना और दृढ़ता के लिए महान ब्रिटिश राष्ट्र की प्रशंसा की। 1980 में रानी एलिजाबेथ वाटिकन की राजकीय यात्रा करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट बनी। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ इस बैठक के दौरान रानी और इंग्लैंड की कलीसिया के प्रमुख ने संत पापा की ग्रेट ब्रिटेन की यात्रा की योजनाओं का सार्वजनिक रूप से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा राजनीतिक नहीं अपितु प्रेरितिक होगी। पूर्व योजना अनुसार 2 साल बाद संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने ग्रेट ब्रिटेन में अपनी प्रेरितिक यात्रा की। 1982 में ग्रेट ब्रिटेन के लिए संत पापा की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ब्रिटेन अर्जेंटीना के साथ युद्ध में था, जिसने ब्रिटिश कब्जे फॉकलैंड द्वीप समूह पर आक्रमण किया था। अपने एक संबोधन में संत पापा ने फॉकलैंड में शांति की मांग की। फिर 18 वर्ष बाद नई सहस्राब्दी में रानी एलिजाबेथ ने अक्टूबर में एक बार फिर वाटिकन का दौरा किया। उन्होंने संत पापा जॉन पॉल द्वितीय के साथ तीसरी बार मुलाकात की। फिर सितंबर 2010 में संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने ग्रेट ब्रिटेन की प्रेरितिक यात्रा की। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में उनकी मुलाकात महारानी एलिजाबेथ से हुई और अप्रैल 2014 में महारानी एलिजाबेथ ने इटली की राजकीय यात्रा की और राष्ट्रपति नापोलितानो से मिलने के बाद वे वाटिकन आईं। वहां उनका स्वागत संत पापा फ्रांसिस ने किया। उधर कोलंबिया में कैथोलिक धर्म प्रांतों की पल्लियों और फूड बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर गरीबों को भोजन खिलाने का काम कर रही है। कलीसिया के स्थानीय कारितास नेटवर्क के अनुसार लगभग 1.5 मिलियन लोगों को 15 मिलियन किलो से अधिक खाद्य पदार्थों से मदद की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ने 20 मार्च को देशव्यापी तालाबंद की घोषणा की, जिससे लाखों लोगों के पास खाद्यान्न की कमी हो गई। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।